الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامر کاتون عالیہ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں 10 برس تک رہا اور 10 برس کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضرت 10 برس میں آپ کے ساتھ رہا لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے سوال فرمایا کہ اچھا ایک بات بتا، تو نے ان 10 برسوں میں میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ کا کوئی عمل میں نے خلاف سنت نہیں دیکھا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہ آہ کھینچی اور فرمایا کہ ہائے، جس جنید نے 10 برس اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا، ظالم اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ لالی قاری محدث عظیم مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامہ. استقامت یعنی دین پر جمع رہنا، یہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے. یہ کرامت کہ ہوا میں اڑنا، یہ تو مکھی بھی ہے. پانی پر چلنا، یہ تو تنکا بھی پانی پر تیرتا ہے. زمین میں گھس جانا، چھچندر بھی زمین میں گھس جاتی ہے. تو میرے دوستو، یہ کوئی کرامت نہیں ہے. اصل کرامت جو ہے وہ اللہ تعالی کی محبت اور تعلق اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانا، اپنے دل کو توڑ دینا لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑنا، یہ اصل کرامت ہے. اور اس سنت پر عمل کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے، وہ کسی عمل سے نہیں ہوتا. میرے دوست، میرے مرشد، میرے شیخ نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو 4 بلاک ہیں، 4 اینٹیں ہیں، ہر اینٹ کی قیمت 15 روپے ہے، ہر بلاک کی قیمت. اینٹ پر ایک بات یاد آئی کہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا کہ اپنی اولادوں کو ایک دم سے اپنا سب کچھ مت دے دو. اولاد کی محبت میں، جوش میں آ کر سب کچھ مت دو ان کو، کچھ اپنے پاس بھی رکھو تاکہ آڑے وقتوں میں کام آئے. اس پر میرے مرشد نے سنایا کہ ایک بڑے میاں نے اپنا سب کچھ جوش میں دے دیا اولادوں میں. اب اولاد نے جو سارا مال تھا وہ تو پا لیا، اب باپ کی خدمت وغیرہ سب ختم، انڈا ڈبل روٹی مکھن اور خدمت وہ سب، پوچھنا خیریت ویریت. اب تو بڈھا بڑا پریشان ہوا، بہت پچھتایا کہ یہ میں نے کیا کیا. مرشد فرماتے کہ رونے لگا اور رو کے اس نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ، یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ان نالائقوں کو میں نے کیا کیا. یہ کیا اللہ، تم میری مدد فرما، میرا بڑھاپا ہے، آپ ہی میری مدد کرنے والے فرمانے والے. उसके जहन में एक तरकीब आई, उसने ब्लॉक लिया ईंट, उस ब्लॉक को लेकर खूब तौलिया वोलिया में लपेटा कपड़े में और उसको अपनी बगल में दबाकर हर वक्त उसको अपने साथ रखता था। मस्जिद भी जाता तो अपने साथ लेकर जाता, सोता तो खूब दबाकर अपने पास सोता, यहां तक कि बैतुल खला भी उसको साथ लेकर जाता। अब बच्चों ने दो चार रोज देखा कि बुढ़ा एक चीज बगल में हर वक्त दबाए रहता है। मैंने कहा ये शक्ल तो किसी ईंट की तरह मालूम होती है, लगता है कोई सोने की ईंट है। तो बच्चों ने देखा तो हर वक्त छोड़ता ही नहीं, हर वक्त साथ रखना, किसी वक्त भी उसको ईंट को नहीं छोड़ता। अब एक बेटा आया, उसने कहा अब्बा तेरे सर पे तेल की मालिश कर दूं, बड़े दिन से खुशकी का जमाना है तो कुछ तेल मालिश कर दूं। उन्होंने कहा अच्छा कर साले कर। कहा अब्बा चल तेरी टांगे दबा दूं। एक ने अब्बा आपको देसी घी के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आपके लिए देसी घी के पराठे और मक्खन और देसी मुर्गी का अंडा बना के लाता हूं। अब सब हलवा वगैरह सब खिदमतें शुरू हो गई। मेरे मुर्शिद फरमाते वो बुढ़ा दिल में हंस रहा है, कर लो कम वक्तों पता चलेगा। उसके बाद वो बुढ़े का इंतकाल हो गया, जनाजा दफना कराए। अब सारे बच्चे गुत्थम गुत्था, एक ने कहा मैंने अब्बा की ज्यादा खिदमत की मैं खोलूंगा, एक ने कहा मैंने ज्यादा खिदमत की मैं खोलूंगा। खैर अब फैसला हुआ, अच्छा भाई चलो कुछ खा खोलो। अब जो खोला वो तली तो खूब लपेट लुपाट टेप वेप लगे हुए थे, जब खोला तो अंदर से एक ईटा निकला अंदर मामूली था। तो मेरे मुर्शिद फरमाते बच्चों ने कहा कि बुड्ढा हमें दगा दे गया। इसलिए फरमाया कि भाई एकदम से सब कुछ जोश में मत दो, जोश में आकर एकदम से अपनी औलाद को मत दे, कुछ अपने पास भी रखो, कुछ कड़े वक्तों के काम आता है। ये मेरे शेख की नसीहत। तो मैं बता रहा था कि वो जो ईंट है वो ब्लॉक वो 15 रुपए का है। अब चार ब्लॉक खरीदे, एक ब्लॉक वो अपने बैतुल खला में लगा दिया, अब दिन रात उस ब्लॉक पर पेशाब कर रहे हैं। अब वो जो उसकी 15 रुपए कीमत थी वो भी ना रही। दूसरा ब्लॉक वो अपने मकान में लगा दिया, अब उसकी कीमत 15 रुपए हो गई। कि जमीन मुस्बत मकान की कीमत बन के मकान बनता है, चलो 15 रुपए कीमत। तीसरा ब्लॉक फरमाया कि हकूमत सऊदीया की इजाजत मिली तो वो ब्लॉक जो है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगा दिया, अब उसकी कीमत और बढ़ गई। चौथा ब्लॉक हकूमत सऊदीया की इजाजत से मुल्तजम पर लगा दिया, अब उसकी कीमत और बढ़ गई। फरमाया क्यों? फरमाया कि जो चीज मरकज के जितने करीब जाती है उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। हालांकि ब्लॉक वही 15 रुपए का है, हर ब्लॉक की कीमत 15 रुपया, लेकिन मरकज से कुर्बत की वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। फरमाया कि हमारा जो मरकज है वो अल्लाह ताला की जात है, हमारा मरकज अल्लाह ताला की जात है। हम लोग जितना सुन्नत पर अमल करेंगे, हम लोग जितना सुन्नत पर अमल करेंगे उतनी हमारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। हमारा मरकज अल्लाह ताला की जात है और हमारा महवर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस है। जितना हम लोग सुन्नत पर अमल करते चले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उतना अल्लाह ताला से कुर्बत और ताल्लुक बढ़ता चला जाएगा, और जितना अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ेगा उतनी हमारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि सुन्नत पर अमल करो। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तफत्तबिउनी मेरी इत्तबा करो। तो आप देखिए एक आदमी किसी से कहे जनाब मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, उससे मोहब्बत का दावा हो और उसकी औलाद से मोहब्बत ना करें, आप मानेंगे इस मोहब्बत को? इसलिए अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की अलामत यह है जाहिरी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। فتبعونی میری اتباع کرو، ایک ایک طریقے کو ایک ایک چیز پر عمل کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ امیدیں رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ارجاء یعنی اس طرف ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور انابت اور اس سمت کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو جو لوگ آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کی طرف ارجاء رکھتے ہیں، اس طرف اپنے سمت اور قبلہ بناتے ہیں، تو ان کے لیے سکھا دیا کہ ان کے لیے تو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کا نمونہ آپ کے طریقے پر عمل کرنا. میرے مرشد نے اس کو بھی سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک درزی کے پاس گئے، اس کو اپنی پاجامہ شلوار دی کہ دیکھو ایسی شلوار بنا دو. اب مان لو کہ جی کسی میرے رشتے دار کی شادی ہے، ذرا کپڑے تیار کر کے دے دو میں پہنوں گا. اب دو سوٹ سلنے کے لیے دیے، کرتا شلوار، کرتا دیکھا ٹھیک ہے، شلوار نکالی. اب جو شلوار نکالی تو دیکھا وہ شلوار اتنی بڑی ہے کہ پاؤں کے بھی نیچے جا رہی ہے، دو دو چار چار انچ اور پاؤں کے نیچے. اس کو بڑا غصہ ہے کہ یار یہ کیسی شلوار بنائی. اس نے کہا چلو یار دفاع کرو، دوسری شلوار نکالی. اب جو دوسری شلوار نکالی تو اس کی شلوار وہ گھٹنوں سے تھوڑا نظر نیچے، تو اس کو بڑا غصہ آیا، اٹھایا موبائل، درزی کو ملایا، پہلے کچھ کلمات تبرک پیش کی، کلمات تبریک. ہاں بہن کی عظمتوں میں کچھ اضافہ کرنے کی فکر کوشش کی، یہ کلمات تبریک. اس کے بعد کہا ارے نالائق بیوقوف، یہ کیا کیا تو نے؟ کہا جناب خیریت کیا ہوا؟ کہا یہ تم نے شلواروں کو کیا کیا؟ جی شلوار کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے تمہیں نمونہ دیا تھا، نمونے کی شلوار دی تھی، اس تم نے شلوار کے ساتھ کیا حرکت کی؟ کیا کیا؟ ایک شلوار اتنی بڑی جو کہ ٹخنے سے بھی کیا پاؤں کے بھی نیچے جا رہی ہے، اور دوسری شلوار تم نے چڈی بنا دی، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا جناب یہ ایسے میں نے کام نہیں کیا، بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے. ابے سوچ کے بچے کیا کیا تو نے؟ کہا جناب بات یہ، وہ جو شلوار بڑی کی ہے نا، اصل میں اس میں سے کپڑا بچ رہا تھا، وہ ضائع ہوتا کپڑا، میں نے کہا ضائع ہونے سے بہتر اس کو شلوار میں لگا دو، اس لیے میں نے وہ کپڑے کو ضائع ہونے سے بچا لیا، شلوار میں لگا دیا، کیونکہ اگر اس کی کترن بنتی وہ بیکار ہو جاتی، کسی کام نہ آتی. کہا تیرا دماغ خراب ہے. کہا دوسری کا کیا کیا؟ سناب دوسری کا اس کا تو کپڑا تھا زیادہ تھا. کہا یہی تو ہے کپڑا زیادہ تھا، اگر میں اس کی پوری شلوار بناتا تو کپڑا بچتا، لیکن بات یہ کہ میں نے کپڑا اس کا کاٹ کی چھٹی اس لیے کی، اس کا کپڑا بچا لیا، اب آپ کے بچے کا جو ہے وہ کرتا پاجامہ بن جائے گا اس سے، اس لیے میں نے یہ کام کیا. فائدے کے خیر، کوئی نقصان والا کام نہیں، فائدے والا کام ہے. بس اس کے بعد جو اس نے فل اسپیڈ سے شروع کیا علی سے لے کر یا تک، نالائق تو اپنی عقل تنہیں لڑائی کیوں، جب میں نے تجھے نمونہ دیا تھا کہ اس نمونے کے مطابق میری شلواریں اور پاجامے بنانے ہیں، تو تم نے نمونے سے خلاف کیوں کیا؟ یہ نمونہ کس لیے تھا؟ میرا نقصان تھا، میرا نفع، تجھے کیا فکر ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، اب دیکھیے ہم ایک کرتا ایک شلوار دیتے ہیں، اس کے لیے ہم نمونہ دیتے ہیں، اور درزی کو کہتے تھے کہ ایسا بنانا ہے، خبردار ایک انچ نہ ادھر کرنا نہ ادھر کرنا. واہ، ہم تو اپنے کرتا شلوار اپنے کپڑوں کے اندر کتنا اہتمام ہے، خبردار ایک انچ ادھر ادھر نہ کرنا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. اگر ہم اس نمونے سے آگے بڑھ جائیں گے تو بھی میرے دوستو فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس نمونے کو ہم نے کمی کر دی، اس نمونے کے اندر ہم نے کمی کر دی، تو ہم اپنی آخرت کا نقصان کریں گے. لہذا جتنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اتنا کام کریں، نہ کمی نہ زیادتی. ہر چیز کے اندر کوئی کمی اور زیادتی न कमी अच्छी है न ज्यादती अच्छी है। जैसे नींद में कमी करना नुकसानदेह है। हजरत कुतुबुल आलम मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को शख्स खत लिखा, हजरत जब जिक्र करने बैठता हूं नींद आती है क्या करूं? फरमाया तस्बीह रखो, तकिया लो और सो जाओ। सुभान अल्लाह। फरमाया कि मेरे शेख फरमाते कि हकीम उल उम्मत ने फरमाया सुभान अल्लाह क्या इलाज है अल्लाह का। अब नींद आ रही है जबरदस्ती जिक्र है, ये क्या जिक्र है? सुभान अल्लाह। फरमाया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफरीता फिन नौम, नींद में कमी मत करो। दादा नींद की कमी मना की, और ज्यादती करे तो भी मुज़िर है, सुस्ती और काहिली पैदा होती है। एक आदमी परले दर्जे का सुस्त और काहिल था। एक दिन उसकी बीवी बैठी थी, उसने कोई काम कहा, उसने कहा अच्छा अभी करता हूं। अब उसकी बीवी को गुस्सा आया, उसने कहा अगर दुनिया में नालायकी का और सुस्ती का अगर आलमी मुकाबला हो ना तो तू अव्वल नंबर आएगा। उसने कहा हाँ बेगम कहती तो तू ठीक है लेकिन जाए कौन। लिहाजा नींद की ज्यादती ये भी नुकसान दे और नींद की कमी ये भी नुकसान दे। अब क्या एतदाल का रास्ता? वो एतदाल क्या है? 6 से 8 घंटे की नींद है। कम करेगा तो मुज़िर, ज्यादा करेगा तो मुज़िर। उसी तरह से खाना है। हर बीमारी की जड़ 2 चीजें हैं। बीमारी की इब्तदा 2 चीजों से होती है। वो 2 चीजें क्या है? एक है नींद, एक है पेट, खाना। हर बीमारी की जड़ और इब्तदा इन 2 से निकलती है। नींद में कमी करेगा, खाने में कमी करेगा, नुकसान होगा। नींद में ज्यादती करेगा, खाने में ज्यादती करेगा, नुकसान होगा। हर चीज इसी से निकलती है। लिहाजा खाना ज्यादा खाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगी, हार्ट का मरज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, सारी बीमारियां। अब ब्लड प्रेशर शुरू हुआ तो सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर आएगा, भाई मैं इधर हूं आप इधर आइए। नींद की कमी खाने की कमी करेगा, जिस्म में दर्द उठेगा, कुव्वत मुदाफियत में कमी होगी, तमाम बीमारियां निकलना शुरू हो जाएंगी। कमर वगैरह का दर्द भी अक्सर इसी से शुरू होता है। तो पता ये चला खाने के एक एतदाल चाहिए। एतदाल क्या है? एतदाल का पैमाना ये रखा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि मदीना शरीफ के अंदर एक यहूदी हकीम आया। 6 महीने के बाद उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के नबी 6 महीने से मदीना शरीफ में कोई ग्राहक ही नहीं आता, हालांकि मैंने लिखकर भी लगाया कि शादी से पहले मिलिए, शादी के बाद मिलिए, अपनी खोई हुई जवानी वापस हासिल कीजिए। ये खोड़ी वापस हासिल होती है, खोई हुई जवानी। जैसे बकरी के थन से दूध निकल गया अब वो वापस नहीं जा सकता, इसी में अकल का भी हो गया कि अकल कहती है ना कि क्या कि हर काम हो सकता है, अकल से हम सब समझ सकते हैं। जरा अकल कहती है कि बकरी के थन से जो दूध निकल गया वो वापस भी जा सकता है, अकल है, क्योंकि जो चीज जहां जाए वहां वापस भी जा सकती है। अकल का तो यही मानती है ना, घुसेड़ के दिखा दे, पेशाब जो कर लिया जहां से निकला वापस घुसेड़ा भी जा सकता है। अकल तस्लीम है, कोई इसका इंकार नहीं कर सकता, अकली तौर पर घुसेड़ के दिखाए। सुभान अल्लाह। अकल का इलाज हो गया कि बेवकूफ वाली बातें मत करो। दादा हर अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजह यह है कि मेरे साहबा जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, अभी भूख थोड़ी बाकी होती कि खाना छोड़ देते हैं, तो कैसे इनके बीमारी आएगी? ये बीमारी का नुस्खा हो गया, बीमारी से बचने का सेहत का नुस्खा बता दिया कि भूख लगे तो खाना खाओ, भूख लगे तो खाना खाओ, अभी थोड़ी भूख बाकी हो खाना छोड़ दो। अब हो सकता है किसी को एक रोटी से ये मामला हो जाए, किसी का 2 रोटी से, किसी का 3 रोटी से, किसी का 5 रोटी से। हर एक का एतदाल है, हर एक का एतदाल अलग होगा। मजदूर की भूख अलग है। मैं एक हकीम साहब गए किसी देहात में किसी काम से, वहां चौधरी साहब क्या मेहमान थे। अब चौधरी साहब क्या देखा कि वो खेती बाड़ी की बैठे थे, वो भी बेटे से जा पुत्र चार जा पुत्र रोटी ले आओ। पुत्र गया रोटी लेकर आ गया। अब वो देहाती रोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी, अब वो चार रोटी उसने सालन वगैरह के साथ खाया और चारों रोटी खा गया। ये देहाती मोटी 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 देहाती रोटी। उसके बाद जा पुत्र लस्सी लिया। अब वो गया पंजाबी गिलास में लस्सी ले आया, ये बड़ा पंजाबी गिलास लस्सी लेकर आ गया। अब उसने पानी लस्सी पूरा गिलास पिया। हकीम साहब देख रहे हो, उन्होंने कहा चौधरी साहब तुसी एक ही कर रहे हो। चौधरी साहब पानी हमेशा खाने के दरमियान पीते, खाने के ऊपर पानी नहीं पीते। ये तो आपने रोटी खाई ऊपर से पानी पिया, ये तो दुरुस्त नहीं है, दरमियान में पानी पीना चाहिए। अच्छा जा पुत्र चार रोटी और ले आ। चार रोटी आए वो भी खा गया। हकीम साहब हक्का बक्का मुंह खुला देख रहे, ये जालिम ने भी चार रोटी खाई, वो देहाती मोटी मोटी और चार रोटी और खा गया। उसने कहा आपके लिए कोई उसूल नहीं है, आप जैसे खाएं जैसे पिए। पता ही चला हरेक का एतदाल अलग होगा। वो आदमी मुबतला भी ही वो खुद समझ सकता है, हर आदमी खुद समझेगा कि मेरी भूख कितनी है। इंसान है कभी दो रोटी की भूख होती है और ये भूख का अलग अलग मेयार है। जब दाल पकी हो तो एक रोटी की भूख लगती है और जब मुर्गी हो तो तीन रोटी की भूख होती है। हमारा तो मेयार ही अलग है ना। चिकन कढ़ाई हो तो भूख अलग होगी और सब्जी हो भूख अलग होगी, फिर आधी रोटी में पेट भर जाएगा। और मुर्गी हो और गोश्त हो फिर तो तीन रोटी में पेट नहीं भरता। लादा खाना खा भी चुके होंगे, खाना खा भी चुके होंगे, मुर्गी की टांग देखते ही बस पागल बन जाएंगे, कहा लाओ और लाओ। और खाना मजेदार खाना बिरयानी देखी कहा और लाओ। साकिया जामे उल्फत पिला दे, अब वो कह रहे और पिला और पिला। तो ये नहीं है भूख, इसको नहीं बोलते। खाने को देखकर भूख लगाना नहीं होती है। बहरहाल इंसान इश्तिहा है, कोई पसंदीदा चीज देख के ज्यादा कभी खा लेता है तो कोई इसमें वो नहीं खा सकता है, उससे भूख तबीयत असल में तबीयत का खुलना है। मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि एक शेख ने खानका में ऐलान किया कि भाई देखो खाना इत्तेदाल से खाना होगा। अब एक मुरीद की शिकायत गई कि 15 रोटी खाता है। शेख को शिकायत की, शेख ने फरमाया बुलाया। जालिम ऐलान क्यों हुआ था, शेख का ऐलान था कि रोटी इत्तेदाल से खानी, तू 15 रोटी खाता। उसने कहा हुजूर वाला हर एक का इत्तेदाल अलग अलग है। शेख ने कहा अच्छा वो कैसे, कहा हुजूर मैं अपने घर में 21 रोटी खाता हूं, यहां तो मैं 15 पर गुजारा कर रहा हूं। तो शेख ने फरमाया हाँ भाई तेरा इत्तेदाल वाकई तेरा इत्तेदाल है। तो ये मुबतला भी वो आदमी खुद समझेगा कि मैं कितना खाना खाऊं, ये खुद समझेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ला तफरीता फिन्नौम, न नींद में कमी करो न ज्यादती करो। उसी तरह से न खाने में कमी करनी चाहिए न खाने में ज्यादती करनी चाहिए। कि पता ये चला डकार लेने की जगह भी नहीं है। ऐसे ही एक होता है ना दाढ़ी वाले हैं, बस मस्जिद की मुल्ला बन जाते हैं, दाढ़ी देख के लोग बना देते हैं, वो भी किताबें पढ़ पढ़ के मुल्ला बन जाते। उसने एक दिन तकरीर की कि भाई देखो मैदे के तीन हिस्से करो, एक खाने के लिए, एक हवा पानी के लिए, एक हवा के लिए। ये हदीस शरीफ का मजमून है कि मैदे के तीन हिस्से करो। लादा मैदे के तीन हिस्से करके खाना चाहिए जनाब सबको। वहीं एक मिस्टर बैठा था जो मुल्लाओं का दुश्मन था, वो भी आ गया गलती से जुम्मा पढ़ने की। उसने कहा वाह कैसी साइंटिफिक तकरीर कि मुल्ला ये सिखा रहा है। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मुल्ला है। बीवी से जाकर बड़ी तारीफ की। उसने कहा इस मुल्ला की तो मैं दावत करूंगा, आज मैंने पहला ऐसा मुल्ला देखा। अब वो क्या उसने मौलवी साहब से कहा कि जनाब आपकी दावत है। अच्छा भाई कुंभा बड़ा था, 5 किलो गोश्त पका था, 24-25 रोटियां थी। अब उसने सब आगे रख दी कि पहले हजरत साहब खाएंगे, फिर बरकत जो होगी वो हम लोग खाएंगे, सब मिटेंगे। अब उसने जो खाना शुरू किया तो 24 रोटियां खा गया, क्योंकि अमूमन शहर के खाने वो लजीज होते हैं, शहरी खाने जरा लजीज होते हैं। अब वो 24 रोटी खा गया। उसके बाद देखा देखचे में भी कुछ बचा। उसने कहा ओहो, उसने ऐलान किया कि बर्तन साफ करना सुन्नत है, आरती चढ़ा के बर्तन में भी घुस गया, सारी बोटियां खा गया। अब वो हक्का बक्का देख रहा है कि जालिम ये क्या। उसने कहा अरे फिर अब तो बर्दाश्त नहीं। उसने ओए ये तुम मेंबर पे क्या तकरीर करते हो कि अपने मैदे के तीन हिस्से करो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, हवा के लिए। खाना तुमने इतना ठूसा, 24 रोटियां 5 किलो गोश्त खा गए और पानी एक गिलास तक नहीं पिया, और हवा का कहां से गुजर होगा। उसने कहा तू अजीब बेवकूफ आदमी है, समझता ही नहीं साइंस, तू समझता ही नहीं। अरे मियां 24 ये जो मैंने रोटी और गोश्त खाए तेरी मोहब्बत की वजह से, इतने मोहब्बत से तूने मेरी दावत की। मैंने कहा ये मोहब्बत को जाएगा ना करो, समेट लिया तेरी मोहब्बत। लाए पानी, पानी तो वैसे ही लिक्विड और सयाल होता है, अपनी जगह खुद बना लेगा भाई, पानी तो अपनी जगह खुद बना लेता है। अब रही बात हवा की, जब 24 रोटी और 5 किलो गोश्त का वजन पड़ेगा हवा नहीं निकलेगी। तो एतदाल चाहिए हर चीज, ये नहीं। अब हमारा क्या हिसाब है, ग्राउंड फ्लोर भरो, बेसमेंट पहले फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर टॉप तक भरते हैं, यानी मुंह खोले तो बोटी नजर आएगी, ऐसा आलम है। अब उसके बाद नतीजा क्या, अब नमाज में भी खड़े यूं है, कुकरवटे ले रहे तरावी। अब देखना रमजान शरीफ आता है, रोजा खुलते ही बस नारे तकबीर बुलंद करके जो है वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह बड़ा है कहकर दही बड़े पे छलांग मारते हैं। ओ देख खाना, अजान नमाज की फिक्र नहीं है। उसके बाद नमाज पढ़ के आए फिर कमजोरी हो गई, फिर खाना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर में तरावी का वक्त हो गया, तरावी पढ़ के आए फिर खाना शुरू कर दिया, फिर खाना शुरू किया, फिर उसके बाद सोने के लिए लेट गए, पहले कुछ गप्पे लगाए फिर सोने, फिर सुबह उठे फिर खाना शुरू कर, खाते ही रहते। नतीजा ये सारा दिन डकारे आती रहती, खट्टी डकारे। अभी वो खाना हजम नहीं हुआ होता कि इफ्तार का टाइम हो जाता। ये तो आलम है, तो खाना पीने का धंधा बनाया है, ऐसा नहीं मेरे दिन। जरा मैदे को कुछ जगह छोड़नी चाहिए कि मैदा भी अपना कुछ काम कर सके। इंसान है ना, इंसान पर उसकी कुवत से ज्यादा बोझ डाल दिया जाए निजाम खराब हो जाए, उसी तरह से मैदे पर अगर ज्यादा खाना ठूस दिया जाए उसका निजाम खराब हो। इसलिए तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत सिखाए, खाना खाओ छोटे नवाले लो और चबा चबा के खाओ, छोटा नवाला चबाओ अच्छी तरह नर्म करो, ताकि मैदे का काम, मैदे के काम के लिए अल्लाह ताला ने दांतों को उसका मुईन और साथी बनाया, क्या वो चबाएगा उससे गिजा नर्म हो जाएगी और तुम तो मैदे के लिए हजम करना सकते। अब हमारा क्या हाल है, हम पहले तो नवाला मुंह में लेते, नवाला मुंह में लिया उसके बाद एक दो मारा अंदर उतार लिया, क्योंकि रेस लगी हुई है खाना खाने में। नतीजा क्या है, पेट खराब, हगने को तैयार है लेकिन खाना ढंग से खाने को तैयार नहीं है। 10 पर 10 तैयार है लेकिन खाना ढंग से खाने को तैयार नहीं, ऐसा हालत। नतीजा तो पेट खराब, शिकायत ही मिलेगी। क्या जी, आजकल एक शिकायत आम है, हमारे ये दोस्त बैठे हैं, पहले ये गैस्ट्रो के अंदर, हवाओं के अंदर, हवा के अंदर स्पेशलिस्ट करना चाह रहे थे, फिर सोचा कि हर वक्त बदबूदार हवाएं सुनने को मिलेगी, इससे बेहतर ये कि होशी उड़ा दो लोगों के। पहले गैस्ट्रोलॉजी के अंदर, यानी गैस्ट्रो के ये जो हवा निकलने, ये रियाह का मरज है, इसमें स्पेशलिस्ट करना चाह रहे थे। मैंने कहा खूब चलेगा, लोगों का काम ही खाना है, खाना खाना काम है, लिजाबे के लिए खाने का मरकज खोलो बस, खूब जो है। उसका तो आसान तरीका था, एक रेस्टोरेंट खोलो, सामने अपनी क्लिनिक बनाओ, सारे बदहजमी के मरीज सीधा तुम्हारे पास आएंगे, तो सबसे करीब क्लिनिक तुम्हारी होगी। जैसे एक जगह मेरे मुर्शिद ने फरमाया, बॉक्सिंग हो रही थी, एक आदमी छलका कह रहा था मार जबड़े पे मार, ऊपर वाले जबड़े दांत तोड़ दे, मार जोर से दांत तोड़ दे। अब एक आदमी खड़ा था, उसने पकड़ के बिठाया, साहब क्या बात है, क्या आप इस फन के माहिर हैं, आप जो इतने मशवरे दे, क्या फन का माहिर नहीं, मैं दांतों का स्पेशलिस्ट हूँ, दांतों का डॉक्टर हूँ, और यहाँ सबसे करीब मेरी दांतों की दुकान है, दांत टूटेंगे मेरे पास आएंगे। इसलिए मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं, इतनी जल्दी किसी पर एतमाद न करना, मतलब पता नहीं किस मतलब के लिए तुमको मशवरे दे रहा है, देख लो परख लो भाई, ऐसे जल्दी किसी पर एतमाद ना करो, पता नहीं अपने गरज और लालच के लिए कहेगा। वो जैसे एक आदमी को कोई मैदे में कुछ शिकायत हुई, कुछ उसको शिकायत हुई, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो एक काम करो, थोड़ी सी ठंडक का जमाना है, रात को सोते वक्त जो है ठंडे पानी से नहाओ, और उसके बाद नहाने के बाद बाहर निकलकर खूब तेज पंखा चलाओ उसके, और बदन को सुखाना मत, और पंखे के नीचे जाकर बैठो और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, उसके बाद तुमको नमोनिया हो जाएगा, फिर मेरे पास आना, मैं नमोनिया का डॉक्टर हूं। इसलिए फरमाया किसी पर जल्दी एतमाद ना करो, देखो पता नहीं किस गरज और लालच के लिए करो। लेकिन لیکن اللہ والوں پر بھی احسان بدگمانی کرنا شروع کر دینا کہ دیکھو کس مطلب کے لیے کر لیں. وہ اللہ کے لیے محبت کرتے تم ان سے یہ بدگمانی نہ کر. تو ہر چیز کا اعتدال سنت کے اندر میرے دوستو اعتدال ہے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اعتدال کا پیغام دیتی ہے, اور جتنا سنت پر ہم عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق ہمارا بڑھے گا. اس لیے فرمایا کہ فتبعونی, میری اتباع کرو. لہذا نماز کی سنتیں اس کو سیکھے کہ جی نماز کی سنتیں کیا ہے, کیسے ہاتھ باندھنے, کیسے کھڑے ہونے. سیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر پورے نماز, اب آپ دیکھیں اب کوئی نمازی کیسے کھڑا ہے, کوئی کیسے کھڑا, کسی کے پاؤں یوں ہے کسی کے پاؤں, کیوں سیکھا ہی نہیں. ہم لوگ نماز دیکھتے ہیں سیکھتے نہیں, زندگی گزر گئی ہم نے نماز نہیں سیکھی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ ہماری نماز خلاف سنت ہے, نماز کے مسائل کا ہم کو علم نہیں ہے. لہذا کیسے کھڑے ہو؟ دونوں پاؤں سیدھے بالکل قبلے کی طرف کر کے کھڑا ہو, دونوں پاؤں بالکل سیدھا قبلے کی طرف کرے کہ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے, اور جب کھڑا ہو تو جھک کر نہ کھڑا ہو, نہ اکڑ کے کھڑا ہو, درمیانی حالت میں کھڑا ہو, اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف کرے اس طریقے سے, اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے, پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کان کی لو تک لے جائے ایسے کر کے. اب آپ دیکھتے ہیں اب ہاتھ باندھنے کا کیا, دیکھتے ہیں کہ کوئی کیسے پاؤں ایسے کسی کے کسی کے کیسے, اور پھر کوئی ایسے کر رہا کوئی ایسے کر, یعنی مختلف انداز ہے نا, کیوں سیکھا نہیں ہے. لہذا اگر کوئی نماز سیکھ لے, اب دیکھ لے یہ سنت دیکھ لی نا کہ جی اپنے ایسے کھڑا نا ایسے اللہ اکبر کر کے ایسے باندھنا, اب ہر آدمی نے دیکھ لیا. اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں اگر اس ترکیب پر عمل کریں گے سب کا ایک جیسا ہوگا, فرق نہیں ہوگا پھر. اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے, ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ اس سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے ایسے کر کے, دیکھو یہ اس حصے کو اس جگہ رکھ لو, یہ تین انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی چنگلی اور انگوٹھا اس کو ایسے ہلکا بنا کر چھوڑ دے ناک کے نیچے ہاتھ باندھ. اب ہر آدمی کا ایسے باندھنے کا طریقہ ہو, یہ طریقہ تو کیا ہوگا, سب کی نماز ایک جیسی ہوگی. نماز کی سنت اب اقامت ہے, اقامت کی سنتیں سیکھی. مسجد میں داخل ہونا, ہر آدمی داخلے سے پہلے الٹا پاؤں نکال کر جوتے سے الٹے پاؤں کو جوتے کے اوپر رکھ دے, الٹے پاؤں کو جوتے کے اوپر رکھے. کیوں؟ سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا سنت ہے, اور جوتے سے پہلے الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے. اب الٹا پاؤں جوتے سے نکالا, اس کو جوتی کے اوپر رکھا, پھر سیدھا پاؤں نکال کر اس کو مسجد میں داخل کر دو. سبحان اللہ, کیا پیارا طریقہ ہے. میرے مرشد نے سکھایا اس طرح کہ الٹا پاؤں جوتی سے نکالو اور اس کو جوتی کے اوپر رکھ, جوتی سے نکال کر جوتی کے اوپر رکھا, پھر سیدھا پاؤں جوتی سے نکال کر اس کو مسجد میں داخل کر دی. تو دیکھیے, اور جب مسجد سے نکلے تو مسجد سے نکلنے کی سنت کیا, الٹے پاؤں کو پہلے نکالے. لہٰذا الٹے پاؤں کو نکال کر جوتی کے اوپر رکھے, پھر سیدھا پاؤں مسجد سے نکال کر جوتی کے اندر داخل کر دے. اب دونوں سنتیں جمع ہو گئی. کون سی؟ جوتی سیدھے پاؤں میں پہلے پہننا, یہ بھی سنت, اور مسجد سے سیدھا پاؤں بعد میں نکالنا, یہ بھی سنت. اب دونوں سنتیں جمع ہو گئی. ہو گیا نا جناب؟ تو نتیجہ ہی ہوگا, ہر نمازی اگر ایسے کرے تو کتنا پیارا طریقہ ہوگا. اسی طرح ہم لوگوں کو جوتی اتارنی بھی نہیں آتی, عالم کیا ہے. اب آئے مسجد میں گھر میں, جوتی ماری وہاں ماری وہ ماری وہاں ماری, ایک جوتی ادھر ایک جوتی ادھر. اب بعض لوگوں کو دیکھا جوتی لاتے نا, ایک جوتی ادھر رکھتے ایک جوتی ادھر رکھتے, ایسے بھی ہوشیار ہیں. میں نے پوچھا ایک صاحب سے, بھائی صاحب آپ ایسا کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب چور دیکھے تو اس کو ایک ہی جوتی ملے گی, وہ ایک جوتی کیا اٹھائے گا. اچھا, میں نے کہا اگر چور نے آپ کو دونوں جوتی رکھتے ہوئے دیکھ لیا اب تو خاموش. کہہ رہا یار بس کرو یار, ایسی باتیں نہیں کرو. میں نے کہا جو تم عقل مندی کی بات ہے تو تم خود کر رہے ہو کہ ایک جوتی ادھر رکھی ایک جوتی ادھر رکھی, کہ جی چور دیکھے گا ایک جوتی ہے ایک جوتی نہیں ہے, وہ کیا اٹھائے گا, وہ تو جوتے کا پیئر اور جوڑی تلاش کرتا ہے. اب جوڑی اسے ملے گی نہیں تو وہ جوتی کیا اٹھائے گا. تو میں نے کہا کہ بھائی عقلی بات ہے. اب چور بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ صاحب آئے انہوں نے ایک جوتی اٹھا کے وار کی, ایک بار کی چور نے دیکھ لیا, ایسا ہوتا ہی ہے, پھر کیا کرو گے. میں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان ترکیب اللہ سے تعلق پیدا کرو, بسم اللہ پڑھ کر جوتا رکھو, بسم اللہ توکلت علی اللہ, جوتا رکھے اللہ پہ بھروسہ کرو. اس لیے ایک بزرگ کا کعبہ شریف میں جاتے ان کی جوتی باہر چھوڑ کے چلے جاتے, تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے, سب کی جوتیاں غائب ہو جاتی ہیں آپ کی جوتی غائب نہیں ہوتی. فرماتے جب میں جاتا ہوں تو جوتی کو چور کے لیے حلال کر کے چلے جاتا ہوں, اور چور کی قسمت میں حلال مال نہیں ہے. उसके लिए हलाल कर जाता हूँ, और चोर की किस्मत में हलाल माल नहीं है, उसके लिए तो किस्मत में तो हराम है ना। जूती पर एक बात और याद आई, मेरे शेख ने सुनाया कि एक मुरीद था, तो उसने अपने पीर से कहा, जाली पीर था उसका, उससे कहा कि हजरत मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा भाई तू गरीब आदमी है, तू क्या दावत करेगा। उसने देखा कि असल में जाली पीर क्या, तो खानकाहों में गोया लिखा रहता है, बगल में तू अगर मुर्गी न लाया बराबर है कि तू आया ना आया। यानी जो मुर्गी लेकर आ रहा है पीर उसको सरांखों पे बिठाएगा, और जो मुर्गी उर्गी नहीं ला रहा चलो ये नालायक उधर जाके बैठे। ऐसा तो अब उसके वो उसने देखा कि पीर जी जो मुर्गी ला रहा है उसको तो पूछते मुझे पूछते ही नहीं। उसने एक दिन कहा हजरत मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। पीर ने कहा अरे तू तो इतना गरीब, तू क्या दावत करेगा। हजरत आप है, आपकी दावत मैं चाहता हूँ, आप मेरे पीर है, मेरे मुर्शिद है, मेरे उस्ताद। पीर ने कहा अच्छा भाई ठीक है, हजरत आपकी भी नहीं आपके सब मुरीदों की भी दावत। अच्छा सब मुरीदों की, हजरत सबकी दावत। अब उसके बाद वो पीर साहब को बुलाया, उसके पीर साहब आए बैठे, कहा तशरीफ रखे, बस अभी इंतजाम करते करते थोड़ी देर इंतजाम किया, उसके बाद खाना वाना आया, दस्तखाना खुशबूदार खाने और जबरदस्त बढ़िया। अब पीर साहब ने तो खाना शुरू किया, अल्लाह। बस पीर एक 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 मुरीद ने कहा कि वाह भाई वाह, वाह यार बड़ा मजा आ गया। अब बस यार सब आपकी जूतियों का सदका है। अब खाना ना खत्म हुआ, पीर ने कहा वाह वाह भाई शाबाश, बड़ी जोरदार तूने दावत की, शाबाश तू तो बड़ा लायक हो जाए। उसने कहा हुजूर आपकी बस जूतियों का सदका है। अच्छा चलो अब हम जाते हैं। अच्छा बाहर निकले सबकी जूतियां गायब, देखा तो जूतियां गायब। अरे भाई जूतियां क्यों दे रहे। हजूर मैं पहले ही तो कह रहा था ये सब आपकी जूतियों का सदका है, आपकी जूतियां बेचकर मुझे खाना लेकर आया हूँ और उसी की खाना आपको खिलाया। तो इसीलिए तो मैं कह रहा था ये सब आपकी जूतियों का सदका है। तो इसलिए मैंने मुर्शिद ने वाक्य सुनाकर फरमाया मुरीदों से होशियार भी रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसी हरकत करे, जूती बेचकर आए हजरत आपकी जूतियों का सदका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मेरे शेख को देखिए क्या प्यारी तदबीर दिखा रही। सुभान अल्लाह, मैं अर्ज ही कर रहा था कि हम लोगों को जूती उतारने का सलीका ढंग भी नहीं आता। एक जूती वहां फेंकी, एक जूती वहां फेंकी, कोई तरीका ही नहीं, टेढ़ी एक यू रखी एक यू रखी है। अल्लाह हो ऐसा हो। देखिए अब हर नमाजी आया उसने अपनी दोनों जूती को ऐसे रखा, दूसरा आया उसके बराबर यू रखा, तीसरा आया उसने बराबर यू रखा। आप देखेंगे मस्जिद कैसी, कितना प्यारा मालूम होगा। और सोचे और मुरीदीन के लिए तो खुसूसन जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, जो जालिम अपनी जूती सीधी रखना नहीं जानता वो अपनी इस्लाह क्या करवाएगा। जिसको इतना भी होश नहीं है क्या है, जूती उधर फेंकी वो उधर फेंकी, जूती रखने का भी सलीका नहीं है। इसलिए हमारे मेरे शेख हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मेरे शेख ने हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ये भी देखते थे कि जूती उतारता है ढंग से कि नहीं उतारता। क्यों? जूती उतारने से पता चलेगा कि इसका मिजाज कैसा है, उसी से पता चल जाएगा क्या कैसा बेफिक्रा मिजाज है या फिक्र वाला मिजाज। सुल्तान निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, अकाबिर औलिया रहमतुल्लाह अलैह में से गुजरे निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में आराम फरमा। हजरत के खानका में दो शख्स आए बैत होने के लिए। हजरत क्या तालाब था, पहले जमाने में तालाब हुआ करते थे, हजरत जो पुरानी मस्जिदें हैं वहां पर भी अब तक तालाब आपको मिलेंगे। अब टूटी सिस्टम शुरू हो गया, पहले तालाब बनाए जाते थे, मस्जिद हर मस्जिद में तालाब मिलेगा। अब वो तालाब उन्होंने देखा तो आपस में बातें करने लगे कि क्या हमारे यहां जो तालाब है वो बहुत बड़ा है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह गुफ्तगू गुल्ली तशरीफ गुफ्तगू सुन ली, तशरीफ लाए, फरमाए कि ये तालाब नापो और अपना तालाब नापो जाकर कितना बड़ा है। अब आए तो चंद उंगल का फासला फर्क था, चंद उंगल का फर्क था वो बड़ा था और ये छोटा था, चंद उंगल के फर्क से। अब सुल्तान निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया हजरत इतना फर्क है, फरमाया इसको बहुत बड़ा नहीं कहते, बड़ा तो कहेंगे लेकिन बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, बस बैत नहीं फरमाया। फरमाया तुम्हारे कलाम में एहतियात नहीं है, कैसी गुफ्तगू करते हो, एक चीज थोड़ी बड़ी है उसको कहते हो बहुत बड़ी है, इसी बात पर बैत नहीं फरमाए, कलाम में एहतियात नहीं है, कैसे गुफ्तगू करता है, अपनी जबान कैसे चलाता है। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग के पास जब कोई शख्स आता बैत होने के लिए उसको खाना और रोटी देते, सालन रोटी देते, उसके बाद सालन रोटी जो बचकर आता उसका तनासुब मिलाते, अगर रोटी ज्यादा इस्तेमाल किए सालन कम। कभी ऐसा होता ना कि सालन
रोटी कम होती है तो जल्दी जल्दी बड़े बड़े बोटे लगा लगा कर ठूस ठूस के खाते हैं। वो देखते थे कि सालन कितना बचा है, रोटी कितनी बची, तनासुब से भेजते थे। अगर उसमें तनासुब ठीक ना होता, रेशियो ठीक ना होता, बैत नहीं फरमाते। फरमाया तुम्हारे मिजाज के अंदर बेअतदाली है, बैत ही नहीं फरमाते थे कि खाना खाने की तमीज नहीं तुम्हारे अंदर। इतनी सी बात पर भी पकड़ होती थी। और बात यही है, असल में सलीका ही तो असल चीज है। जिस आदमी के अंदर इतना शऊर नहीं है, खाना खाने की तमीज नहीं है, कि देखा, अब देखा कि बड़े दस्तरखान पर बैठे, ये नहीं कि अदब ही है कि बड़ों का इंतजार कर, जल्दी से छलांग मारकर डोंगे में घुस गए और तलाश कर रहे हैं, ऐसे कर बोटियां अपने मतलब की, उसके बाद अपने मतलब की दो चार बोटियां डाली और सब अब दूसरे मुंह तक रहे, खुद अपने सब भर ली। ये क्या बेअतदाली है, सलीका और तमीज नहीं है। सलीका बड़ी चीज है। अब देखिए ना, एक इज्तिमा है, इज्तिमाई खाना हो रहा। अब एक तरीका क्या है, अल्लाह होगा। इसका तरीका यह है कि क्या करे, कि सब इंतजार करे, जल्दी से सामने बोटी आए, सालन थोड़ा डाला, अपना काम शुरू किया, आगे बढ़ाता चला जाए, सबने ले लिया, फिर उसके बाद बेशक और डाल ले। लेकिन उससे क्या, अगले को इंतजार नहीं रहता। अब हर आदमी है वो यहाँ जनाब बोटियां तलाश करने में लगे हुए और अगले मुंतजर है कि जनाब ये भी करा, ये हटे तो हमारा भी नंबर है। दादा आप देख लीजिए खानों में क्या होता है, शादी के हाल में कैसा जानवरों वाला मामला होता है। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वो जो अप टू डेट और कला अपनी कमीज में एक शिकन नहीं आने देते, आप उनको खाना खाते देखे तो हैरान हो जाएंगे। ऐसे खाते हैं कि अल्लाह अकबर, जंगली बस बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इनको घर में खाने को नहीं मिलता, ऐसे जंगली होते हैं। ये तो हाल है हम लोगों का। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस चीज तक पर नजर रखी कि खाना कैसे खा रहे। मैं अपने शेख के साथ सफर पर, रंगून के सफर में था, हजरत पहले खाने शुरू फरमाते, मैं हजरत के बाद खाना खाने शुरू करता और वो हजरत के खाना खाने से पहले खत्म कर देता। सब उस समय क्या है, शेख ये ना बोले कि देखो शेख का दस्तरखान है, मुरीद को देखो कैसे जालिम पेट भर के खा रहा है। हया की वजह से नहीं खाते, यकीन जाने जवानी का जमाना, शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त, भूख जोरों की लगती थी और बाद में मेजबान से हया के मारे, शर्म के मारे मांगता नहीं था कि मेहमान मेजबान बोलेगा कि देखो पीर रुक हो गया, अब मुरीद आ गया, पेटू मुरीद आ गया, खिलाओ यार जरा और खाना खिलाओ। उसी भूख को बर्दाश्त करते थे। कभी कभी हजरत वाला की शफकत ऐसी होती, फरमाते जाओ तुम बाहर खाना खा लो जाकर। एक दस्तरखान बाहर लगता था, हजरत के साथ दो तीन आदमी बस होते थे। कभी कभी मुझको फरमाते थे जाओ तुम बाहर खाना खाओ जाके, फिर उसको डट के खाते थे। जवानी थी उस वक्त, मेरी उम्र 24 साल की थी। अब 24 साल की उम्र में कैसी भूख लगती है भाई, उस वक्त भूख जोर होगी, फिर उस वक्त खाते थे डट के। हजरत की करा, हजरत की फिरासत, ये समझ जाते थे कि देखो ये कैसा, मैं जाओ बाहर खा लो खाना। मैं भी कुछ नहीं बोलता था कि शेख जैसा रखे वैसा करो, तो सब फिर खाते थे। सब इस हया की वजह से कि आ कैसा ना हो कि शेख बोले कि देखो कैसा है पेटू, जालिम को बिल्कुल ही वो नहीं है। क्योंकि लोग तो देखते ना, बुजुर्गों को भी देखते हैं, उनके पास वालों को भी देखते हैं। क्या पीर की प्लेट में तो एक बोटी है और मुरीद की प्लेट में पांच बोटियां, गौर करते हैं लोग, एक एक चीज को देखते हैं। इसलिए मुरीदों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बड़ों की, शागिर्दों की जिम्मेदारी अपने बड़ों की नेक नामी और इज्जत का जरिया बने। मैं आराज कर रहा था सुन्नत एतदाल है मेरे दोस्त, जितना हम सुन्नत पर अमल करेंगे। अगर हमने अपनी, अब मेरे शेख ने क्या समझा, चार ईंटे ना एक एक लैटरिन में लगाई, उसकी भी कीमत खत्म, एक मकान में, एक मस्जिद नबवी में, एक जो है मुल्तजम पर। फरमाया कैसी हमारी जिंदगी है, अगर हमने अपनी जिंदगी को इन पेशाब पखाने की गटर लाइने, इन लड़कों के चक्कर में, इन औरतों के चक्कर में उसको देखा पर हंसी नजर आई, खुश देखने से क्या फायदा, इन देखने से लानत ही काम करके क्या चीज हासिल की, सिवाय गटर लाइनों की हसीनों के पास क्या है। अपनी जिंदगी को इनके चक्कर में लगाया, क्या किया कि जी टेलीफोन पर हम तो बातें करते, हेलो क्या हाल है यार, कक्षा कर, चेहरे से ही पता चल जाता है कि मोबाइल कंपनी से जब लड़की का फोन आता है ना, उसको पता चल जाता है बीवी ने फोन किया या किसी लड़की का फोन आया, बीवी का फोन आएगा, हाँ क्या बात है बोलो ना, क्या जल्दी बोलो चाहो, और किसी मोबाइल के, अच्छा जी फरमाइए, चेहरे के रंग ही कुछ और होते हैं, ऐसा नस्ल बदमाश है ये।
रंग ही कुछ बदल जाते हैं इसके जालिम के।
किसी ट्रेवल एजेंसी या किसी कंपनी में क्या, वहां लड़की बैठी है, अब आप चूंकि सूफी साहब है ना, नजरें तो नहीं चाहिए, मुस्कुरा के बात करें, सुनिए एक्सक्यूज मी आपकी पास में है, चेहरे का भी यानी चेहरे की लहजा ही बदल जाता है जनाब, लहजा ही कुछ और होता है। पड़ोसन से बात करेगा, सुनिए आप पड़ोसन आएगी, भाईजान है जी, भाईजान बोलिए क्या बात है, भाईजान मुझे जनरल तो ला दीजिए, कोई मसला नहीं। अभी अपनी बहन बोले कि भाईजान जरा वो क्या मैं तुझे चुनू खवाया तो वो अपनी सगी बहन के ला जाए ऐसा, और जो मुंह बोली बहन जी बोलिए, चेहरे पर विशाचद मिठास, शुगर कोटेड पूरा निकलेगा। ये सब नफ्स बदमाश काम कराता है, ऐसे नफ्स की बदमाशी। शादी में बीवी तैयार, उसको नहीं देख रहे, बस भाभी साहब आप तो बड़ी स्मार्ट लग रही है, सारी खात पातीन रिश्तेदार खवातीन को ऊपर से नीचे तक देख रहे, बीवी को नहीं देख रहे, यह आलम ऐसा बदमाश है। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया, आ अगर तुमने अपनी जिंदगी को इन गटर लाइनों पर कुर्बान किया, आखिर में किस मुंह से अल्लाह के सामने पेश होगे, क्या पेश करोगे अपने को कि अल्लाह हमने जिंदगी यहां बर्बाद की। गालिब कहते ना, कर्ज की पीते थे और समझते थे कि हाँ, कर्ज की पीते थे और समझते थे कि हाँ, रंग लाई एक दिन फाका मस्ती हमारी, कि शराब पीते थे जालिम और वो भी कर्ज की, एक दिन सारे कर्जदारों ने पकड़कर जूते लगाए तब दिमाग दुरुस्त हुआ। इन गटर लाइनों के चक्कर में जिंदगी गुजार रहे, इस हसीन वो हसीन, उसको देख उसको देख, या मेले में जमा जा, इन लड़कों के साथ बड़ी गपशप हो रही। फरमाया कि आ कि किन चीजों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हूं, पछताना पड़ेगा एक दिन। कौवे वाला काम मत करो, गलाजत पर मत मरो, एक तो ये जिंदगी, इन पर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। एक जिंदगी है कि चलो ये तो नहीं, हर माल कमा, फ्लैट ले प्लाट ले, वो मकान ले वो मकान ले, कमा सुबह से शाम, न दीन सीखना, न सुन्नत सीखना, न कुरान पाक सीखना, न मसाइल पूछना, कुछ नहीं, बस मोर नोट नोट नोट, और वो जाए क्रेडिट कार्ड लो, फ्लैट कर्जा लो, ये लो, वहां प्लाट ले, वहां मकान ले लो, वो गाड़ी लो, वो बेचो, वो ले लो, वो मोबाइल लो, वो ले लो, इसी में जिंदगी। आ मेरे मुर्शिद, मरोगे क्या लेकर जाओगे अपने साथ। जिस मकान को बनाया, कैसे बनाया, जमात की नमाजें छोड़ दी, मजदूरों की मजदूरियां मार दी, जमात की नमाजें छोड़ दी, बुनियादों में यह हाल है कि जी हम खड़े मजदूरों को देखने के लिए और अजान हो रही है, अल्लाह मस्जिद में नहीं आ रहे। अब आप सोचे क्या इस जिस घर की बुनियादों में अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नाफरमानी होगी, कुरान खानी करने से बरकत आ जाएगी, कुरान खानी करने से, और फिर कुरान खानी की और उसके बाद थोड़ी देर टीवी चल रहा है। जैसे आजकल मेहंदियों का स्टाइल बदल गया, मेहंदी का स्टाइल अब बदल दिया, अब क्या है जी मेहंदी, मौली साहब ने कहा ओ मेहंदी हराम है, ये क्या तुम कुफार की, यानी कुरान खानी कर रहे हैं बरकत के लिए। अब वो भी साहिबा दुपट्टा ऐसे सजा के, दुपट्टा सजा के नंगा, सारे कपड़े नंगे, सारा दुपट्टा सब नंगा, ऐसे कपड़े हैं जिसमें नमाज भी नहीं होती, दुपट्टा ऐसा सब रंग नजारा, नमाज नहीं होती। अब वो कुरान पाक बैठी पड़े, उसके बाद कुरान पाक लपेटा रखा, अब उसके बाद मेहंदी शुरू, अब गाने चला, अब डांस हो रहे, ये सब बदमाशी। ये वो कारिया साहिबा हैं जो अभी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, हाफिज कुरान तक नाचते हैं, हाफिजा तक नाच रही है, बेटी भी माँ भी बोलती बेटी नाचने बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा मौका बाद में थोड़ी आएगा, नाच 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 मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। आलम है मेरे दोस्त। तो फरमाया ये क्या है, ये जिंदगी हम अपनी, क्या इन मकानात, ये सब मिट्टी की चीजें, एक दिन मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे, जिस जिस्म को खिला खिला के मोटा कर रहे हैं, आह ताकत को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक दिन नतीजा क्या होगा, यही ताकत खत्म हो जाएगी, कवर में चले जाएंगे सब खत्म। आज भोलू पहलवान के किस्से किस काम के हैं, भोलू पहलवान के किस्से काम नहीं आएंगे, अल्लाह वालों की अल्लाह पर फिदाकारी काम आएगी। शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में फिदा कर दी, अल्लाह पर फिदा हो गए, आज वो कुर्बान है, आज उनकी यादगारें बाकी हैं। तो अपनी जिंदगी सुन्नत पर अमल करके अल्लाह ताला से करीब हो जाए, और ये चीज सीखे मेरे दोस्तों, सहाबत अहलुल्लाह में यही सीखना है, ये अदाए सीखना है। इसलिए शेख के इंतखाब में जरूरी है कि शेख मुत्तबे सुन्नत मुत्तबे शरीयत हो, ये बहुत जरूरी है। तो फिर नतीजा क्या होगा, फिर हमारी मिट्टी की कीमत होगी मेरे दोस्त, न गटर लाइनों पर न ये मकानात से हमारे कीमत नहीं है।
हम किसी की गाड़ियों की वजह से थोड़ी, अरे जी गाड़ी वाला है, वाह जी साहब सलूट मार रहे, गाड़ी गाय सलूट खत्म। अल्लाह वालों को देखो सुभान अल्लाह, न उनके लिबास, न मिट्टी में बैठे हैं, अल्लाह होगा। दुआ कीजिए अल्लाह की मोहब्बत से किरम से ये टीम, अल्लाह ताला हमारी जानों को तौफीक दे, अपनी जात पाक से ताल्लुक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों ये सीखने की जरूरत है, ये अल्लाह ताला एक पर फिदाकारी सीखे अल्लाह वालों से, ये काम आने की चीज है। बाकी ये सब मकान, ये जायदाद, ये बैंक बैलेंस, ये लिबास, ये सब तो आर्थिक चीज है, इस्तेमाल की है, इसको इस्तेमाल करें, इनसे दिल न लगाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में हासिल करें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हम सबको माफ फरमा, अपना कुर्ब और ताल्लुक हम सबको नसीब फरमा दीजिए, हमारी जानों को अपनी जात पाक पर फिदा करने की तौफीक अता फरमा, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, तक्वा की हयात अता फरमा। या अल्लाह हम सबको फरमा बरदार बना दीजिए, अपना खास कुर्ब और खास ताल्लुक हम सबको नसीब फरमा, एक एक सुन्नत को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमा दीजिए, गुनाहों की गलाजत और गंदगी से हम सबको पाक फरमा दीजिए। ऐ करीम मालिक, आप अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमा और उनसे आपकी प्यारी अदाएं सीखने की, आपके प्यार के काबिल प्यारी अदाएं उनकी सीखने की तौफीक अता फरमा, हमारी जिंदगी को अपनी अपनी या अल्लाह ज़ात पाक पर फिदा होने की तौफीक अता फरमा दीजिए, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत के लिए खास फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी अपनी मोहब्बत हमारी जानों को नसीब फरमा दीजिए और अपनी फरमाबरदारी की हयात और जिंदगी नसीब फरमा, गैरुल्लाह पर कव्वे पने और गलाजत से अल्लाह हम सबको पाक फरमा दीजिए और खास कर ताल्लुक फरमा कर हमारे कामों को आसान फरमा, हमारी जरूरियात को पूरा फरमा।